ओम शांति। हम सभी एक विशेष रूहानी यात्रा पे जब यहाँ आए हैं तो हमें बहुत ही ज्यादा खुशी है कि इस यात्रा पर हमको उड़ाकर ले जाने वाले एक ऐसे वाहक, एक ऐसे पायलट हमारे बीच में हैं, जिनको पिछले 40 सालों से मैंने पर्सनली अपने जीवन के प्रेरणा स्रोत के रूप में पाया है। आदरणीय चंद्रिका दीदी, जिनको अलग किसी पहचान की आवश्यकता नहीं है, पर चूंकि हम वीकेस का ये संगठन है तो मैं एक दो बात ये कहना चाहूंगी कि दीदी अपने बाल्यकाल, चाहे वो जीवन के बाल्यकाल ईश्वरीय बचपन दोनों में ही, जिसको कहते हैं कि पूत के लक्षण पालने में दिखाई देते हैं, मेघावी रहे और हर वो चीज जिसे सोचा उसे पाने के लिए लगातार लगे रहे। और हमें भी हमेशा यही सिखाते हैं कि कोई भी लक्ष्य आप लें तो लग लगे की तरह उसमें लग जाएं, तो कोई चीज ऐसी नहीं होती जो आप प्राप्त न कर पाए। बड़ों के साथ सदा कम्युनिकेशन रख के, छोटों को सदा दोस्त की तरह ट्रीट करके, हर वो गलती को केवल पॉजिटिव एंगल से देखकर और उनमें शक्तियां भरना, ये दीदी की स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की हाइट हमने देखी है। चाहे कितनी बड़ी बात हुई हो, लेकिन वो आत्मा जब सामने आती है तो दीदी बाप समान श्रेष्ठ नजरों से देखते हैं। आज दीदी यज्ञ के कुछ चुनिंदा आधार स्तंभों में से एक है, और तब इनका समय और इनका सानिध्य मिलना ये हम सबका परम सौभाग्य है। हम दीदी से आज ये जानेंगे आध्यात्मिक परिपक्वता का मूल आधार क्या है। कल भी कुछ बातें दीदी ने हमसे कही, लेकिन आज दीदी के पास और अधिक समय हमने मांगा, तो दीदी इस जॉइंट सेशन में आपका बहुत बहुत वेलकम है सबकी तरफ से। कुमार कुमारी और टीचर्स बहनें सभी उपस्थित हैं और आपसे सुनेंगे आध्यात्मिक परिपक्वता।
ओम शांति। पहली मैच्योरिटी, प्रेजेंस ऑफ माइंड। जिस दिन मैं पहली बारी ओम शांति के साथ सभी का स्वर निकला हुआ सुनूंगी, तब मुझे ये महसूस होगा कि यस, हियर इज द मैच्योरिटी। ओम शांति। विषय इतना विस्तार का है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। 45 मिनट में मुझे उसे न्याय देना है। सबसे फर्स्ट मैच्योरिटी, जो बातें जीवन में नहीं होनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, उसको न करे, न आने दे, न चलने दे। नंबर वन मैच्योरिटी, क्योंकि हम नकारात्मकता के युग में जी रहे हैं, हम भयंकर कलयुग में हैं, उसी से हमें खुद को आर पार जाना है और जुड़े हुए सबको नैया पार करानी है। तो जो लाइफ में नहीं होना चाहिए, अब नहीं होना चाहिए उसकी बहुत लंबी लिस्ट है, जैसे कि आलस्य, अलबेलापन, एक्सक्यूजेस, नेगेटिविटी, व्यर्थ, जेलस, परचिंतन, परदर्शन, संग का प्रभाव। जो चीजें नहीं होनी चाहिए उसको मैं अच्छी तरह से इमीडिएट डिलीट कर सकूं, ये है परिपक्वता, क्योंकि उससे मुझे हर हालत में नुकसान है। उसको सोचने में टाइम देना भी वेस्ट ऑफ टाइम है। नंबर वन, ये होमवर्क करना पड़ेगा आपको इस पर। नंबर टू, जीवन की सबसे मूल्यवान चीज, सेकंड, संकल्प, समय, श्वास। समय, संकल्प, श्वास, ये तीन चीजें बहुत मूल्यवान हैं। मुझे उसको जरा भी वेस्ट नहीं करनी है। मुझे अपने समय को, संकल्प को, श्वास को मैक्सिमम बेस्ट तरीके से यूज करना है। कैसे करेंगे? हमारे पास समय की अवेयरनेस चाहिए, अमृत वेले से रात और रात को सोने में भी हमारी अवेयरनेस चाहिए। जो मैं रात को सोने समय ये महसूस करूं, वाह मेरा आज का दिन कमाल, सुबह उठते ही इस फीलिंग के साथ उठे कि आज का मेरा दिन मुझे मैक्सिमम बेस्ट फीलिंग के साथ पास करना है। आज के दिन का मुझे मैक्सिमम बेस्ट एडवांटेज लेना है, क्योंकि मेरे पास केवल आज है, ना कल किसी ने देखी है, ना कल कोई देखने वाला है। मेरी आज और मेरी ये घड़ी, जीरो वेस्टेज है तो आप मैच्योर हो। इसके लिए अवेयरनेस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, किसी प्रकार का आलस्य मेरे पर प्रभाव नहीं डाले। तीसरी बात, मनुष्य सोशल एनिमल है और मनुष्य दो चीज के बिना जी नहीं सकता है। एक इंसान को इंसान चाहिए, दूसरा इंसान को काम चाहिए। आप किसी इंसान को कोने में बिठा दो, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, बैठे रहो, वो टॉलरेट कर सकेगा? यहां आपको सब 36 प्रकार का पकवान देंगे, सब कुछ देंगे, तुम्हें कुछ काम नहीं करना है और तुम्हें किसी से मिलना नहीं है, ये टॉलरेट हो सकेगा? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सजा है। इसलिए दो बातों का ख्याल चाहिए, क्योंकि मुझे लोगों की जरूरत है। मैं किसी से भी संकल्प मात्र मेरा व्यवहार बिगाड़ू नहीं। भावना में, व्यवहार में आते हुए, उसके प्रति सोचते हुए एक इंसान भगवान की गिफ्ट है। और जो भी मेरे पास आते हैं मेरे लिए ईश्वर की गिफ्ट है, मुझे उसका सत्कार करना है, मुझे उसका सम्मान करना है। कभी ये भूले नहीं। जब आपसे ये नहीं होता है तब आपका ईगो आपको खत्म कर रहा है, आप समझ लीजिए। आपका किसी से बनता नहीं है, आपके संस्कार टक्कर होते हैं, कोई आपको लाइक नहीं करते हैं, कोई को आपसे एलर्जी हो रही है, तो अपना मूल्यांकन कर लीजिए कि हम कितने में हैं। नथिंग। लोग हमें पसंद नहीं करते हैं, हम किस काम आएंगे? लोगों को हमारे से एलर्जी है। और काम, जितना काम मिले करते जाओ प्रेम से। हम इतने स्ट्रेचेबल हैं, जितना लंबा अपने को स्ट्रेच करना चाहो कर सकते हो। कभी ना नहीं बोलो, यस आई विल डू एंड आई विल मैनेज, मैं करूंगी और अपने जीवन के समय के साथ मैनेज करूंगी। मैं कितना करूं, मैं अकेली कैसे कर सकती हूं, मेरे से तो नहीं होगा। आपने स्वयं मैदान छोड़ दिया। मुझे एक सत्य मालूम है कि मैं अकेली जीवन में कुछ भी नहीं कर सकने वाली हूं। आत्मा को शरीर के बिना नहीं चलेगा और जीवात्मा को लोगों के बिना नहीं चलेगा। मुझे मालूम है मैं करा तो सकती हूं। व्यक्ति को काम से मतलब है, आप करो या कराओ। ना सुनना तो मेरे को भी अच्छा नहीं लगता, तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, किसी को भी ना सुनना अच्छा नहीं लगता है। यस आई विल मैनेज, आई विल डू इट। तो इस जीवन के अंदर ये बिल्कुल प्राथमिक मैच्योरिटी है। तीन बातें बताई है, ज्यादा आज नहीं लूंगी। जो नहीं होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, निकाल दो लिस्ट, बैठो अपने से फटाफट डिलीट करो, क्योंकि वो डेंजर है। दूसरी बात, समय, संकल्प, श्वास, जरा भी वेस्टेज में नहीं जाने दो, पूरा इन्वेस्ट करना है। तीसरा, संबंध और काम, लोगों के साथ के संबंध को और हमको मिलने वाले काम को। कोई काम नहीं दे हमको, हमें खुद को ढूंढना चाहिए, पर हम काम के लायक रहे, काम करते रहे जीवन में। तो ये तीन प्रकार की मैच्योरिटी तो बहुत प्राथमिक मैच्योरिटी है, बिल्कुल प्राथमिक मैच्योरिटी है, जिससे आप अपने आप को, लाइफ को वर्थ लिविंग अनुभव करेंगे कि नहीं, मेरी लाइफ जीने लायक है, माई लाइफ इज वर्थ लिविंग। जीवन का भी कोई अर्थ है, जीवन का भी कोई आउटपुट मुझे दिखाई पड़ता है, तो जीवन जीने का उत्साह आएगा। और वन थी, कोई भी मूल पर जीवन में हिम्मत, उमंग, उत्साह को बनाए रखना है। जरा भी हिम्मत, उमंग, उत्साह का मीटर नीचे नहीं आना चाहिए। आजकल लोग डायबिटीज और बीपी का कितना ध्यान रखते हैं, क्यों रखते हो भाई? शुगर का इतना सारा ध्यान रखते हो, बीपी का इतना सारा ध्यान रखते हो। अगर इस बात का ध्यान रहा ना, तो बाकी सब चीजें अपने आप ठीक रहेगी। हिम्मत, उमंग, उत्साह, बस इतना बना रहे। तो आज इतनी बातों के पर प्रकाश डाल के फिर आगे हम कुछ शेयरिंग के रास्ते पर जा रहे हैं। कृति बहन तो कुछ पूछेंगी, लेकिन आप लोगों में से किसी को कुछ इमर्ज हो प्रश्न के रूप में, तो नोट करना, चिट्ठी लिख के भेज देना। एक मिनट, ये बातें पक्की हुई? इस बातों के साथ कन्विंस हैं आप सभी? इस बातों से कन्विंस हैं? लगता है ये जितनी बातें सुनी उसको यहां हम स्टैंप दे करके फाइनल करके ही यहां से निकलेंगे। इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? तो हाथ उठाओ। बस अपना कमांड अपने हाथ में है। बेस्ट ऑफ लक, ताली जोर से बजाओ।
थैंक यू दीदी जी, आपने परिपक्व स्थिति का जो फाउंडेशन है उसको हमारे सामने बहुत क्लैरिटी से रखा। एक प्रश्न ये है कि यहाँ बैठे हुए 21 से 35 साल की युवा उम्र वाले हैं, ये उम्र थोड़ा मौज मस्ती इस प्रकार के एक मानसिकता वाला समय होता है। ऐसे समय में परिपक्व अवस्था की बात क्यों आवश्यक है?
अब वास्तविकता तो ये है कि इसी उम्र में ही वो जो छोटा सा पौधा था वो बाहर निकल रहा है और वो अपने रूप रंग को ले रहा है। ऐसे समय पर स्वयं के अंदर स्वयं के प्रति की जागरूकता बहुत स्वाभाविक ही आनी चाहिए। क्यों कि 14 साल से ऊपर जब बच्चा किशोरावस्था का होता है तो उसका विवेक जागृत होने लगता है, शरीर के बदलावों के बारे में, अपने एजुकेशन के बारे में, अपने माँ बाप के बिहेवियर के बारे में, वो जो क्यूरियोसिटी है ना, जिज्ञासा है, वो उस समय फुल फोर्स में होती है। जानने की इच्छा, क्यूरियोसिटी उस समय फुल फॉर्म में होती है। उसी समय सबसे बड़ी बात, अपने संग का ध्यान रहे और अपने व्यक्तित्व को बनाने का लक्ष्य रहे। इसलिए सबसे ज्यादा अटेंशन देने की कोई उम्र हो तो एज ऑफ 14 टू 21। इसी उम्र में ही दुनिया के जितने बड़े लोग हुए हैं आप उनके जीवन को देख लीजिएगा, इसी उम्र में ही उन्होंने अपने जीवन की अचीवमेंट को शुरू किया है। क्योंकि आत्मा को शरीर की इंद्रियों का पूरा विकास हुआ प्राप्त होता है, इसीलिए आत्मा फिर शरीर द्वारा अपनी यात्रा करना चाहती है। तो इसीलिए इसी एज के अंदर ये परिपक्वता होना जरूरी है और आती भी है। केवल जो पहली तीन बातें बताई ने कि जो नहीं होना चाहिए उसकी जागृति, जो वेस्ट नहीं करना है उसका प्लानिंग, और तीसरा क्या बोला, संबंध और काम, उसका मूल्य। अब ये जरूरी है। और माँ बाप के साथ का व्यवहार, लोगों के साथ का व्यवहार, ये समझ यहां से विकसती है। तो इसीलिए इस उम्र में तो ये सब सावधानी बहुत ही आवश्यक है।
परिपक्वता सामान्यतः एक प्रोसेस है। परिपक्वता एक प्रकार का प्रोसेस है और प्रोसेस से चल करके ही परिपक्वता जनरली आती है। इसको बाबा के शब्दों में कहे तो बाबा ने एक शब्द यूज किया है, अनुभवी मूर्त।
अनुभवी मूर्त,
अनुभवी मूर्त, ज्ञान के भी अनुभवी मूर्त, परिस्थितियों से पार होने के भी अनुभवी मूर्त। तो अनुभवी मूर्त की स्थिति तक पहुंचना ये एक प्रक्रिया है। और जब कोई प्रक्रिया से हम पास होते हैं तो उसमें बहुत सारी चैलेंजेस भी आती है। तो ऐसी क्या हमारी विचारधारा हो, क्या हमारी मनसा हो, जिसके आधार पर आई हुई कोई भी चुनौतियों को हम बहुत काम और बहुत स्टेबल अवस्था से पार कर सके। पार होती है इस उम्र में, लेकिन कभी जोश आता है, कभी आवेश आता है, कभी एग्रेसिवनेस आ जाती है। तो आध्यात्मिक रूप से जिसको हम परिपक्व कहे, ऐसी स्टेबल पर्सनालिटी के लिए क्या प्रक्रिया है?
सबसे पहले तो बड़ों के साथ का सम्मान पूर्वक का व्यवहार, क्योंकि हम बचपन से आगे बढ़ते जाते हैं, हम वैसे इंडिपेंडेंट होने का समय 21-22 वर्ष से ऊपर जब चले जाते हैं तो इंडिपेंडेंसी अपने आप आ जाती है। वो समय इंडिपेंडेंसी का है कि आपने पढ़ लिया, अभी आपने अपनी लाइन पसंद कर ली, शादी कर ली, अपना छोटा मोटा कोई बिजनेस चालू कर लिया, परंतु तब तक माता पिता हैं, उनका आज्ञाकारी होकर के चलना है। फिर अपनी जो हॉबीज हैं, पढ़ने की, लिखने की, एक अच्छे साहित्य को पढ़ना, उसके प्रति अपना अटेंशन रखना, सबसे बड़ी अपनी दिनचर्या समय की डायरी को मेंटेन करना, तो ये सब बातें हमें आगे ले जाएगी। हमें लोगों के साथ रहना ही पड़ेगा। आज सेंटर लाइफ में है तो इंचार्ज बहन के साथ छोटी बहन को चलना पड़ता है। उस चलने के अंदर अगर वो सफल होती है तो वो आगे की स्टेज में जाती है, पर वो चलने की स्टेज में सफल ही नहीं हो रही है। संस्कार मिलते नहीं है, बातों को फेस नहीं कर पाते। ठीक उसी प्रकार भाई लोग हैं, कोई जॉब के लिए जा रहे हैं। अब जरूर है जॉब है तो नए स्थान होगा, नए लोग होगी, नए चैलेंजेस होगी। अगर आप उनको फेस करने की तैयारी नहीं रखेंगे तो आप उस चैलेंज से थ्रू नहीं हो सकेंगे, पीछे हट करेंगे। कहीं जल्दी जल्दी नौकरियां बदलते रहते हैं, जल्दी जल्दी लोगों की कंपनी बदलते रहते हैं, ऐसे करते हैं, स्टेबिलिटी नहीं आती है। तो स्टेबिलिटी चाहिए कि नहीं मुझे इस बात को समझना है, तो जितना स्वयं पर ध्यान होगा, आत्मा की ये नेचुरल है बातें, उसको पॉजिटिवली जितना ध्यान रखेंगे, और ये तो स्वयं को स्वयं पर ही ध्यान रखना पड़ेगा, विवेक है आत्मा के, विवेक का खून नहीं करे, बस इतना ध्यान रखे, जो पहले ही कहा नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, पर जब बस व्यक्ति विवेक का खून करते हैं तो वो डायरेक्ट मैच्योरिटी का ही खून हो जाता है।
अगर कार्य कारोबार में और व्यवहार में, चाहे अपने संबंध की बात कही, चाहे कारोबार में कामकाज की बात कही, अगर दोनों में स्टेबिलिटी बढ़ानी है तो कौन कौन से विशेष गुण हमें डेवलप करना जरूरी होगा? मिसाल के तौर पर, जब तक किसी के पास सिंसियरिटी नहीं है तब तक स्टेबिलिटी या कोई भी काम में लंबे समय की सफलता नहीं मिल सकती है, उसमें थोड़ा घिसने की, पिटने की, मरने की, झुकने की तैयारी चाहिए। ऐसी कौन कौन सी बातें हैं या गुण है जिसके आधार पर मैच्योरिटी हम बहुत जल्दी अपने में अनुभव कर सकते हैं?
सबसे पहली पॉजिटिविटी का गुण हो, हर व्यक्ति के साथ रहते हुए, हर कार्य करते हुए हमारा सकारात्मक बिहेवियर हो। दूसरी बात, एडजस्ट होने की पावर हो, क्योंकि आपको काम तो करना ही है किसी न किसी के साथ, तो आप अपने आप को एडजस्ट कर सको, वहां आपका ईगो टक्कर नहीं खाए, क्यों मैं भी तो बड़ी हूं, क्यों मुझे भी तो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, क्यों हमको भी तो सीट मिलनी चाहिए। ये शुरू के जीवन में बहुत इमैच्योरिटी होती है, हमको भी स्टेटस मिलना चाहिए, हमको भी भाषण कराने का मिलना चाहिए, हमको भी पोजीशन, हमको भी प्रमोशन मिलना चाहिए, हमको भी पगार में बढ़ावा होना चाहिए, लाइक दैट। जब मनुष्य को एक्सपेक्टेशन होती है ना, तो उसको बुद्धि डल हो जाती है, उसको वो एक्सपेक्टेशन दिखाई पड़ता है, अपनी जो मॉरल ड्यूटी है वो नहीं दिखाई पड़ती है, तो अपनी एडजस्टमेंट के साथ अपनी ड्यूटी की अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तीसरी बात, नम्रता का गुण बहुत चाहिए, जो बात कहनी है, जो बात बड़ों तक पहुंचानी है तो नम्रता के साथ कहे, और फिर बड़े जो कुछ कह रहे हैं उस बात को समझने की कोशिश करें, तो नम्रता का गुण जरूर चाहिए। फिर स्वीकार भाव चाहिए, जो इस एज के अंदर ये सब चीजों को हमें डेवलप करना पड़ता है, होती नहीं है, उस चीजों को अपने अंदर हमें आवाहन करना पड़ता है कि नहीं ये काम मुझे करना पड़ेगा, ये मुझे अपने में अंडरस्टैंडिंग लानी पड़ेगी, तो ये कुछ चाहिए, आज्ञाकारिता चाहिए, नम्रता चाहिए, सम्मान के साथ चलने की बात चाहिए, एडजस्टमेंट चाहिए, स्वीकार भाव चाहिए, ये कुछ एक बातें चाहिए जो हम मिलजुल के काम कर सके। और आपको मालूम है वेल है ने, वेल अपने आप नहीं चढ़ सकती है, वेल को किसी का सपोर्ट चाहिए जिसके आधार पर वो चलते हैं। लाइफ के अंदर कुछ उम्र तक तो हमें किसी का सपोर्ट चाहिए, जिसके सपोर्ट से हम आगे बढ़ सकते हैं। आज हम लोग यहाँ तक आए, हमारी दादियों की, बड़ों की, दीदियों की समझ को देखा, उनके जीवन को देखा, उनके आदर्शों को देखा, उसके प्रति फुल रिस्पेक्ट रखा, ऐसा बनने का अंदर में भाव रखा, तो आज हम यहाँ हैं। अगर ये चीज नहीं रखी होती तो आज हम यहाँ नहीं होते।
आपने अभी अभी एक बात आज्ञाकारिता की कही। यहाँ एक प्रश्न ये उठता है, पहले के समय में तो ये सिखाया जाता था कि अगर बड़ी दीदी तेल का डिब्बा फेंकने को कहे तो आप फेंक दो, लेकिन अब हमारे मन में आर्ग्यूमेंट आता है कि ऐसा क्यों करना चाहिए हमें, इससे यज्ञ का नुकसान होगा। तो यहाँ पूछने का भाव ये है कि आज्ञाकारी बनने के लिए क्या अपनी बात बड़ों के आगे चाहे विनम्रता से रखे रखना चाहिए, ये सामना करना है, या चुप ही रहना चाहिए चाहे मन माने या न माने, मन स्वीकार करे या न करे, आज्ञाकारिता की राइट परिभाषा क्या है?
हमें आज्ञा तब मिलती है, आज्ञा क्या कहा जाता, जब कोई मिशन है, जब कोई कार्य है, वो कार्य करने के लिए हमें आदेश मिलता है कि आपको ये कार्य करना है। अब कोई भी कार्य है वो इजी तो नहीं होता है, उसमें चैलेंजेस होती है, हमें उसको पूरा ज्ञान नहीं होता है, हमें उसका नॉलेजफुल बनना पड़ता है। हमारे लिए तो एक बहुत बड़ी चैलेंज होती है क्योंकि हमको मालूम नहीं है। तो पहले तो इस आज्ञा को कारी बनना चाहिए, उस बात को मैं दादी प्रकाशवाणी के एक मिसाल से बताना चाहूंगी। मैंने दादी जी को पूछा था कि दादी आप दादी कैसे बनी, तो दादी जी ने कहा चंद्रिका तुम्हारा तुम क्या सवाल पूछ रही हो। मैंने कहा मैं ठीक पूछ रही हूं, आप दादी कैसे बनी। बोला अच्छा चलो तुमने पूछा है तो दादी बताती हैं। दादी हमेशा मैं नहीं बोलती थी, दादी अपने लिए क्या बोलती थी, दादी जैसे कोई दूसरा व्यक्ति हो। फिर बोला देखो यज्ञ में कोई भी नया कार्य करना होता था तो बाबा सबको बिठाते थे, हम सभी वत्सों को बिठाते थे, फिर बाबा कहते थे कि ये काम करना है, फिर बाबा पूछते थे कि कौन करेगा, तो मैं तुरंत हाथ खड़ा कर देती थी कि बाबा मैं करूंगी। अगर मुझे ये काम आता नहीं था तो मैं मम्मा से पूछती थी, बड़ों से पूछती थी, खुद बाबा से भी पूछती थी, फिर मैं वो करती थी, पर मैं हमेशा हाथ ऊपर रखता था। माना ये चैलेंज को सामने से एक्सेप्ट कर लिया, आज्ञा को स्वीकार कर लिया। और फिर उन्होंने दूसरा स्टेप क्या किया, नहीं मालूम तो पूछो, अनुभवी से पूछो और आगे बढ़ो। एक बार आपको जो आज्ञा देती है वो आज्ञा के लिए एक बार तो हां बोल दो, हां बोलने के बाद आप जहां रुकते हो, जहां आपको कंफ्यूजन होता है, जहां आपको कुछ भय या डर लगता है, रिस्क लगता है, आप विनय पूर्वक पूछो कि मैं ऐसा फील कर रही हूं मुझे क्या करना है। विनय पूर्वक आप पूछ सकते हो ना, पर आप पहले ही मन में डर रख करके या बातों को रख करके आप ना बोल दो कि नहीं ये तो मेरे से नहीं होता, क्यों, आपके मन में कुछ पहली सुनी सुनाई बातें हैं जिसके कारण आप मना कर रहे हो, या आप अपने ही कंफर्ट जोन को छोड़ करके जाना नहीं चाहते हो इसीलिए आप कह रहे हो। तो ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत अधिक से अधिक लोग 98% लोग कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहते हैं, खाली 2-3% लोग दुनिया में होते हैं जो कंफर्ट जोन छोड़ करके व्हाट में कम आने दो जो आना है वो हीरो बनते हैं, वो बाहर निकलते हैं।
सार रूप में ऐसा कह सकते हैं कि बालिक बन करके हम अपनी राय को रखें और जो राय मिलती है उसमें मन बुद्धि चलाए बिना बालक बन करके उसको स्वीकार करें।
जी, जी,
जी। एक और बात है कि यंग एज में हमारी अगर परिपक्व अवस्था इन स्टेप्स पर चलकर बनती है तो एक आंतरिक फीलिंग क्या बनेगी, और जब हम लोगों के बीच जाते हैं तो जो परिपक्व अवस्था वाले व्यक्ति होते हैं उनकी चाहे एक्सेप्टेंस कहो या परख कहो या कौन सी विशेषताएं औरों के बीच उनकी उजागर होगी?
सबसे पहले वो बहुत स्वस्थ नजर आएंगे, बहुत स्वस्थ नजर आएंगे। अब आप समझ गए ना, स्वस्थ नजर आएंगे। लोगों के बीच में आने में लोग बहुत हेजिटेट होते हैं, अपने अस्तित्व को संभाल नहीं सकते हैं। अब क्या करना चाहिए, अब कैसे करना चाहिए, यहाँ खड़ा रहना चाहिए कि नहीं खड़ा रहना चाहिए, बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, इसको स्वस्थ नहीं कहा जाता है। तो पहले तो वो स्वस्थ होंगे, दूसरा वो धैर्यवत नजर आएंगे। जब कुछ बातचीत में आएंगे तो स्टेबिलिटी नजर आएगी, अपने अस्तित्व को बनाए रखने में उनको जरा भी कंफ्यूजन नहीं होगा, बड़ी स्टेबिलिटी के साथ, स्वस्थता के साथ वो नजर आएंगे।
जो कहेंगे वो भी शायद सोच समझ करके बोलेंगे, रैंडमली नहीं कहेंगे।
नहीं।
दूसरी बात, क्या ऐसी मैच्योर आत्माओं का कोई भी बात जब सामने आती है तो उनका रिएक्शन किस प्रकार का होगा या होना चाहिए?
देखो, कोई बात को अगर वो नहीं समझेगा तो वो विवेक पूर्वक ये कह सकता है कि मुझे ये थोड़ा आप समझा सकते हैं, मैं इतना समझ नहीं पा रही हूं, या फिर कहेंगे कि मुझे थोड़ा टाइम दो तो मैं उस पर थोड़ा सोच करके आपको बता सकती हूं। वो इमीडिएट जवाब दे ही दे, नॉट नेसेसरी, क्योंकि हमारे लिए कोई बात नहीं है तो हमें सोच समझ करके जवाब देना पड़ता है, क्योंकि एक बार आपके मुख से जवाब निकल गया उसके बाद फिर आप बातों को बदलो तो सामने वाली व्यक्ति के लिए आप एक दुविधा हो। समझो मैंने एक बात कही मिस्टर ए को, भी आपको ये करना है, उसने बोल दिया ठीक मैं कर दूंगा, फिर वो गया, फिर 5 मिनट के बाद फोन करता है, मैंने बोला तो सही पर मेरे से तो ये नहीं होगा बहन, क्या हुआ, मेरे लिए तो प्रॉब्लम ही हो गया ना। तो सोच समझ करके जवाब देगा।
इसका मतलब ये हुआ कि एक स्पिरिचुअली मैच्योर व्यक्ति जो होगा वो तुरंत किसी बात में रिएक्ट नहीं करेगा, वो जो कुछ भी करेगा वो सोच समझ
वो रिएक्ट भी नहीं करेगा तो वो रिजेक्ट भी नहीं करेगा, मना भी नहीं कर देगा, वो कहेगा नहीं मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, फिर वो बता देंगे कि नहीं अगर आपने कहा तो आप थोड़ा टाइम, जितना टाइम मांगा है उतने टाइम में रिस्पॉन्ड कर लो, आप मुझे 10 मिनट दीजिए, 15 मिनट दीजिए, 1 दिवस दीजिए, मुझे मेरे कारोबार को देख करके एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। पर फिर आप जवाब ही नहीं दो, ये नहीं होना चाहिए।
दूसरी एक बात ये भी है कि जो मैच्योर पर्सनालिटी होगी वो कभी सच कभी झूठ इसका सहारा लेकर के अपने को बचाव करने का प्रयास ना करे, ये एक विशेषता मैं समझती हूँ बहुत जरूरी है। मैं एक मिसाल सुनाती हूँ, कल की बात है। कोई बहन आई तो वो कोई भाई के बजाय बहन को लेकर आई थी, बहन के बजाय कोई और था, अदर कुमारी थी। तो कहा ऐसे कैसे आपने किया, आपको लाना था तो थोड़ा परमिशन ले लेते थे। तो एकदम से टर्न अप किया और कहा नहीं नहीं वो तो नाम अरुण था, अरुणा नाम था, मैं लिखने में गलती हो गई। मतलब इससे पता चलता है कि खुद भी कंफ्यूज्ड है क्या राइट जवाब देना। तो स्पिरिचुअली मैच्योर व्यक्ति जो होगा वो जो भी जवाब देगा, वो जो भी बातचीत करेगा,
बनावट नहीं करेगा।
हाँ, तो दीदी थोड़ा इस पर आप एक बार प्रकाश डालेंगे कि बात को बना लेना, उस समय तो हम बात से निकल जाते हैं लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या है, और वो एक मैच्योर पर्सनालिटी के हिसाब से ये चीजें हमारे लिए कितना नुकसान करता है।
देखो, जिनके जीवन में मिलावट या बनावट आती है उसका एक कारण कि वो दूसरों के प्रभाव में जीते हैं, दूसरों के इन्फ्लुएंस में जीते हैं। दूसरे जो कर रहे हैं वो बात जो उनको अच्छी लगती है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए, मुझे भी ऐसा मिलना चाहिए, तो मेथड को न जानते हुए उसका अगर कोई शॉर्टकट हो तो वो शॉर्टकट करने की लालसा में ऐसे भूले कर बैठते हैं। फिर उसका परिणाम तो अच्छा नहीं मिलता है, परंतु सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ऐसी बनावट करने वाली व्यक्तियों के, मिलावट करने वाली व्यक्तियों का लोगों के बीच ज्यादा पसंदीदा व्यवहार नहीं रहता है, मतलब ज्यादा उनका चलता नहीं है। तो इसलिए हम जो है जैसे है अपने आप को सच्चाई से समझ करके और सच्चा व्यवहार करना चाहिए, मिलावट या बनावट नहीं होनी चाहिए, न साथियों में, न बड़ों में, न छोटों में कभी भी मिलावट नहीं होनी चाहिए, बनावट नहीं होनी चाहिए। कभी कभी कोई कहते हैं मैं जा रहा हूँ उत्तर में, लेकिन मालूम चलता है कि वो दक्षिण में गया है, हमको बोला उत्तर में जा रहा हूँ लेकिन निकला दक्षिण से, तो ये बनावट होती है।
इससे हमारे इमेज, हमारे कैरेक्टर, इन सब के लिए भी तो एक क्वेश्चन उठ सकता है ना आगे के लिए। तो जब हम एक मैच्योर पर्सन के हिसाब से लोगों के बीच जाना चाहते हैं तो हमारी इमेज, हम भले बेफिक्र है जिसको जो बोलना हो, लेकिन बाहर में हमारे व्यवहार की इमेज और हमारे कैरेक्टर का स्ट्रोंग होना क्या जरूरी है इतना?
अगर आपको बाबा की इच्छा पूरी करनी है, लोग पसंद बनना है, प्रभु पसंद बनना है, स्वपसंद बनना है, तो ये सब ध्यान रखना पड़ेगा।
मतलब मैच्योरिटी की यही पहली निशानी है कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसका प्रभाव, प्रतिभाव, हर चीज को हम ध्यान में लेकर के कोई भी कार्य में आए, बड़ों के साथ, छोटों के साथ। जिस तरह की बिहेवियर की एक मर्यादाओं को मुझे संभाल करके चलना चाहिए, वो मर्यादा में अगर मैं संभल कर चल रही हूँ तो मेरा मैच्योरिटी लेवल अच्छा है। तीसरा, मैं बिना कंफ्यूज हुए अपनी हर बात को राइट अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी के साथ अगर करती हूँ तब मैं एक मैच्योर पर्सनालिटी के रूप में लोगों के बीच आ सकती हूँ। तो कुछ बात ऐसी है आज इस पर, इन्हों को पूरा दिन इसी की गहराई में जाकर इन्हीं प्रश्नों पर आप लोगों को अच्छी तरह चर्चा करनी है, इसीलिए कुछ बातें आज प्रश्न के रूप में हमने आदरणीय दीदी जी के पास रखा। दीदी जी, हमारे पास फिर भी 5 मिनट है। अब मैं कोई प्रश्न पूछने के बजाय आपसे ये विनम्र अनुरोध करूंगी कि सभी के लिए इन 5 मिनटों में कोई स्पेशल ब्लेसिंग वाली बात या इंस्पिरेशन वाली बात सार रूप में आप दें।
ओम शांति। समय दुनिया में अति विनाश का है, हमारे लिए संपन्न संपूर्ण बाप समान बनने का है। इस समय को देखते हुए स्वयं के प्रति स्वयं की वृत्ति दृष्टि स्मृति कृति मनसा वाचा कर्मणा संबंध और संपर्क, ये सब कुछ बाप समान कहां तक बना है? क्योंकि बाप समान की परिभाषा अव्यक्त मुरलियों में हमें मिल गई है। बाबा की मनसा क्या है? तो बाबा की मनसा सर्व के प्रति आत्मा आत्मा की है, ये आत्माएं हैं, मेरे बच्चे हैं। हमेशा यही मनसा है कि ये मेरे बच्चे मेरे समान हैं। वृत्ति कौन सी है? विश्व कल्याण की है, रहम दिली की है, क्षमा भाव की है। तो क्या मेरी वृत्ति इस ऊंचाई को पहुंच रही है? दृष्टि क्या है? बाबा लास्ट नंबर की आत्मा को भी नंबर 1 फरिश्ता सो देवता की नजर से देखता है। तो क्या हर आत्मा को देखते हुए ये दृष्टि की ऊंचाई मेरी रहती है कि देह के तरफ उनके व्यवहारों की तरफ बुद्धि चली जाती है? कर्म निराकार बाप कर्म करता है साकार द्वारा। वो अपनी अशरीरी निराकारी स्थिति में हमेशा रहते हैं, निराकारी स्थिति में। ब्रह्मा बाप काम करता है शिव बाबा के साथ रहते हुए। तो ब्रह्मा बाप की जो स्थिति है वो हमारी चाहिए। ब्रह्मा बाप की स्थिति रही कौन सी? करण करावन हार बाप करा रहे हैं, हम निमित्त कर रहे हैं। संबंध और संपर्क, संबंध के प्रति पूर्ण सम्मान का भाव और निस्वार्थ भाव, हमें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, देना है बस। तो स्मृति, ये जो भी है अपने को देखे कि मैं इस ऊंचाई पर अपने को रख पाती हूं, रखना है उसके लिए चेकिंग और अटेंशन कि मैं अपने को ये बाप समान की हर स्थिति पर कितना रख सकती हूं। ये वर्तमान समय के हिसाब से हम हर एक बीके भाई बहनों के लिए मैच्योरिटी है।
सबकी तरफ से आदरणीय दीदी जी का बहुत बहुत दिल के सम्मान के साथ धन्यवाद करते हैं। दीदी जी शांतिवन में अति व्यस्त होते हुए भी कल भी हमारे बीच स्पेशली हमसे मिलने आई हैं, आज भी हम सबसे मिलने पहुंची हैं। युवाओं के प्रति आपका स्नेह इसी से हम फील कर पाते हैं। आपका एक बार फिर बहुत 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 दिल से धन्यवाद, शुक्रिया।